नमस्कार दोस्तों, अब आप लोग राम का अवतार तथा राम की उपासना नामक चैप्टर का वाचन विवेकानंद की आवाज में सुनेंगे। विष्णु के अवतारों में राम का अवतार समाज में सर्वाधिक व्यापक माने और प्रतिष्ठित हुआ। राम के महत्व और उनके आख्यान की गरिमा को लेकर वाल्मीकि ने रामायण की रचना बहुत पहले ही कर दी थी, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। किंतु वासुदेव कृष्ण की तुलना में राम की उपासना का प्रचार और प्रसार उतना नहीं हो सका। वस्तुतः राम को अवतार के रूप में मानने का क्रम प्रवर्ती काल में संभवतः पहली सदी ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो गुप्त युग में आकर पुराण साहित्य में वर्णित हुआ। रामायण में राम के अवतार के रूप का जो उल्लेख मिलता है वह प्रक्षिप्त है, बहुत बाद में जोड़ा गया है। पुराणों के अतिरिक्त कालिदास कृत रघुवंश में विष्णु के अवतार के रूप में राम जन्म की कथा दी गई है। वायु पुराण जैसे प्राचीन पुराण के अतिरिक्त अन्य पुराणों में भी राम को विष्णु का अवतार माना गया है। गुप्त युगीन स्थापत्य और वास्तुकला में रामाख्यान के दृश्य मिलते हैं। देवगढ़ झांसी से राम सीता लक्ष्मण आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, किंतु पूर्व गुप्त युगीन साहित्य में राम का अवतार रूप नहीं मिलता। पंतजलि के महाभाष्य में इसका संदर्भ मिलता है, न पूर्ववर्ती स्मृतियों में। अतः रामोपासना का वह विकास नहीं हुआ जो वासुदेव कृष्ण की उपासना का हुआ। 1011 ईस्वी में अमित गिरी ने राम को जगत स्रष्टा, जगन्नियंता, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ के रूप में चित्रित किया। राम के चरित्र को महाकवि भवभूति ने अत्यंत अभिराम और उत्कृष्ट रूप में अभिव्यंजित किया है। माधव के विषय में यह प्रचलित है कि वे बद्रिकाश्रय से भगवान राम की मूर्ति लाए थे। 1264 ईस्वी के लगभग उन्होंने नरहरि तीर्थ से राम और सीता की प्रतिमाएं जगन्नाथ धाम मंगवाई थी। राम लक्ष्मण और सीता की एक साथ गढ़ी हुई प्रतिमाएं कुरुक्षेत्र के निकट से प्राप्त हुई हैं, जो संभवतः प्रतिहार शासन भोजदेव और महेंद्रपाल के काल की हैं। इस समय यह प्रतिमा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में है। 13वीं सदी के लेखक हेमाद्री के ग्रंथ व्रतखंड में राम नवमी के दिन राम जन्म त्योहार मनाने का निर्देश किया गया है। वृद्धहारित ने अवतारों के साथ साथ राम अवतार का उल्लेख करते हुए उनकी महत्ता पर प्रकाश डाला है। राम के देवत्व और परम पुरुष रूप को वर्णित करने के लिए अध्यात्म रामायण की रचना की गई थी, जो संभवतः 14वीं सदी के बाद की रचना है। नित्य सर्वज्ञ और आनंद के रूप में राम का चित्रण किया गया है। मूल बुद्धिमय और दृश्यमान पदार्थ नामक आत्मा की त्रिविध प्रकृति बतलाई गई है, जिनमें अंतिम दो सत्य नहीं है। पुरुष के अंतिम कांड के पंचम सर्ग में भगवद गीता की तरह राम गीता का संयोजन किया गया है, जिसे राम ने लक्ष्मण को अद्वैत मत का उपदेश देने के लिए सुनाया था। रामानंद मृत्यु 1457 ईस्वी ने वैष्णव धर्म के प्रसार में ग्रांतदर्शी भूमिका निभाई तथा पारंपरिक जाति पाति और ऊंच नीच की व्यवस्था से पूर्णतः अलग होकर मानवतावादी भूमि पर अपने मतों, सिद्धांतों और उपदेशों का प्रसार किया। जन भाषाओं के माध्यम से उन्होंने अपने अनेक अनुयायी बना लिए। उन्होंने वेद पुराण आदि का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्म सर्वत्र है और वह सर्वव्यापी है। आध्यात्मिक आधार पर उन्होंने राम की प्रतिष्ठा की। राम सीता की उपासना को उन्होंने समाज में प्रचारित किया। कालांतर में आकर रामानंद संप्रदाय का विकास हुआ, जिसमें पीपा, कबीर, रैदास, मलुकदास, दादू आदि प्रमुख अनुयायी हुए। उनके अनुगामी गले में तुलसी की माला और मस्तक पर त्रिपुंड युक्त वैष्णव टीका धारण करते थे। रामानंद के अनुयायियों और शिष्यों में बड़े ऊंचे ऊंचे संत और महात्मा हुए। उनमें उच्च जातियों के अतिरिक्त निम्न जातियों के संत भी थे। भावानंद, सुखानंद, आशानंद, परमानंद, महानंद और श्रीमानंद ब्राह्मण थे, तो कबीर, रैदास, धन्ना जाट, सेनानाई, सदना, कसाई, पीपा आदि निम्न और दलित जाति के, इनमें कबीर अग्रण्य हैं। उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से 1425 ईस्वी में हुआ था। नवजात शिशु को वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान पर छोड़ दिया गया था, जिसे नूरी नामक चूल्हे और उसकी पत्नी नीमा ने पाला पोसा। उन्होंने बालक का नाम कबीर रखा, जिसका अभिप्राय है महान। कबीर ने अपने को कभी भी मुसलमान नहीं स्वीकार किया है, वह अपने को जुलाहा ही कहते हैं। वस्तुतः वह जाति पाति के झगड़े से सर्वथा अलग 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 थलग थे। उनमें योग मार्ग, सहज यानी और नाथ पंथ के प्रभाव सुरक्षित थे। गुरु रामानंद की कृपा से उन्होंने अपने संस्कार को सर्जनात्मक क्रिया की ओर उन्मुख किया। हिंदू धर्म दर्शन और मुस्लिम सूफी सिद्धांतों को उन्होंने अपने आप में आत्मसात किया। उन्होंने अध्यात्म और ज्ञान का धीरे धीरे अनुभव किया। सहज, शून्य, माया, योग आदि की उन्होंने नैतिक और परिकल्पना के आधार पर व्याख्या की। उनका मन और मस्तिष्क समकालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक दशाओं से उत्पीड़ित था। वे उस दशा में सुधार करना चाहते थे, अतः उनका हृदय लोक कल्याण और मानवतावाद के अभ्युत्थान में लगा। उन्होंने धर्म और भक्ति की व्याख्या अपने अनुसार की। वे धर्म को सहज और सुबोध आधार पर मानते थे। कर्म की सरल प्रक्रिया अपनाकर धर्म को सर्वसाधारण के लिए उन्होंने सुलभ किया। वेद वाक्य और धार्मिक अंधानुकरण को उन्होंने प्रश्रय नहीं दिया। साथ ही हिंदू के आचार, कर्मकांड, व्रत, अवतार आदि की उन्होंने तीखी आलोचना की तथा उन पर व्यंग किया। पाखंड और अंधविश्वास पर स्थित कोई भी धर्म रहा हो, पर कबीर के व्यंग वाणों से नहीं बच सका। वे उस धर्म के समर्थक थे जिसमें न पाखंड हो, न अंधविश्वास, न ऊंच नीच की भावनाएं हो और न छुआछूत की। उनके धर्म में मानवीय गुणों को प्रधान स्थान प्राप्त था। वे स्वयं सहज सरल आचरण, सत्य और शुद्ध चरित्र, दान दया की भावना, धौर्य असंतोष का मार्ग, काम क्रोध से रहित व्यक्तित्व, ईर्ष्या द्वेष लोभ से विलग चरित्र की कामना करते थे। उन्हीं तत्वों पर आधारित उनका धर्म था, जो मानवतावाद का उत्प्रेरक उत्स था। उन्होंने निर्गुण अथवा निराकार ब्रह्म की उपासना की, जो साई के रूप में उनकी जीवा से निश्रित था। उन्होंने अपना जीवन साई के जीवों के लिए अर्पित कर दिया था। मुस्लिम और हिंदू संस्कृतियों और धर्म के तत्वों को अपने ढंग से गृहित कर कबीर ने समन्वय की भी स्थापित किया था। उनका निराकार ब्रह्म समन्वय का प्रतीक था। उनकी भक्ति कर्म और ज्ञान से उच्च थी। उनके अनुसार ब्रह्म की समीपता भक्ति से ही संभव थी। उनका यह स्पष्ट मत था कि जप, स्नान, ध्यान, संयम आदि मिथ्या हैं, केवल भक्ति से ही आराध्य देव की अनुभूति की जा सकती है। उनकी भक्ति प्रेम, राग और सौहार्द पर निर्भर करती है, इसलिए वह प्रेम तत्व से अविल हैं। अपने गुरु रामानंद के ब्रह्म राम को वे निराकार मानते हुए स्वीकार करते हैं कि जिसे प्रेम रीति से सेवित किया जा सकता है, उसकी प्राप्ति कहीं भी की जा सकती है। इसके लिए मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत आदि की कोई आवश्यकता नहीं। कबीर यह मानते हैं कि अंतस में स्थित ब्रह्म की खोज और प्राप्ति ही सहज समाधि है, जो ज्ञान और भक्ति से ही संभव है। ब्रह्म की विद्यमानता सर्वत्र है, जो शून्य है, जिसके साथ जीव समदर्शिता के आधार पर तादात्म्य चाहता है। यह प्रक्रिया उसी प्रकार होती है जिस प्रकार वेगवती सरिता समुद्र में मिलने के लिए उतावली रहती है। सांसारिक और ऐहिक तत्वों के कारण ऐसा नहीं हो पाता, जो माया है। योग से ही तादात्म्य में हो पाता है, जो मन के असंयम से संभव है। उनके अनुसार इस साधना के लिए आसन लगाना, आंखें मुदना, मुद्रा में रहना, तत्र मंत्र का अनुसरण करना, योगी का वेश धारण करना, काम धंधा त्याग देना, संप्रदाय में सम्मिलित होना आवश्यक नहीं। वस्तुतः मनुष्य के मन में ही आसन, समाधि, जप, तप आदि सभी स्थितियां हैं। उनका कथन है, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस ना करई निद्रा। मन में आसन मन में रहना, आ मन का जप तप मन सु कहना। मन में खपरा मन में सिंगी, अनहद वेन बजावे रंगी। स्पष्ट है कि कबीर ने मन के संयम पर अधिक बल दिया है तथा इंद्रिय विषय को ध्वस्त करने की बात की है। ऐसा करने से ही सिद्धि की प्राप्ति मानी गई। पंज पंजारी भसम करी अंका, कहे कबीर सो लहसे लंका। मन का संयम साधारण, गृहस्थ जीवन के अनुपालन, पारिवारिक उत्तरदायित्व तो आदि गृहस्थ श्रम से भी माना गया है। कबीर जैसे संतों ने समस्त विश्व को शब्द, कोष्ठ में शब्द के रूप में माना है। इस शब्द के दो पक्ष हैं, पहला तान, कोष्ठ में सुरति, और लय, कोष्ठ में विरति। सुरति और विरति का योग असीम और असीम का संयोग है, जिसके माध्यम से परब्रह्मा अपने को अभियंजित करता है। वह प्रक्रिया और निष्पन्नता प्रेम युक्त है, इसलिए प्रकृति भी प्रेममयी है। अगर देखा जाए तो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, सूर्य, चंद्र आदि प्रकृति के उपादान और परमात्मा की प्रेम के रूप हैं। सकल संसार में प्रेम लीला हो रही है, जिसमें परमात्मा स्वयं तल्लीन है। अतः ईश्वर स्वयं सर्वोच्च प्रेमी है। ऐसी स्थिति में समस्त सृष्टि प्रेम से आविल है। प्रेम के कारण ही मनुष्य दिव्य और प्रांजल है। इसी प्रेम के माध्यम से धर्म तत्व तक पहुंचा जाता है। प्रेम में भक्ति में प्रेम अपेक्षित है। बिना प्रेम के भक्ति का आयाम संभव नहीं। राम के चरित्र को आदर्श और सर्वगुण संपन्न सिद्ध करने में सर्वाधिक और अभूतपूर्व सफलता गोस्वामी तुलसीदास को मिली थी, जिन्होंने जन भाषा में रामचरितमानस की रचना करके उत्तर भारत के प्रत्येक घर को राम के उज्जवल चरित्र से मुखर कर दिया। तुलसीदास के ही प्रयास से वाराणसी तथा अन्य स्थानों पर रामलीला का आयोजन होने लगा तथा अनेक राम मंदिरों का निर्माण भी हुआ। हनुमान के पूजन का विधान वाराणसी में उन्होंने स्वयं अनेक हनुमान मंदिरों का स्थापना करके किया। आज उत्तर भारत में राम पूजा का जितना प्रसार है, वह सब तुलसीदास और उनकी कृति रामचरितमानस का प्रभाव है। वैसे राम पूजा में हनुमान की आराधना एक प्रधान आधार रही है। हनुमान के पराक्रम और शक्ति का संदर्भ महाभारत में भी मिलता है, जो तत्कालिक समाज में हनुमान के प्रभाव को व्यक्त करता है। अर्जुन के रथ की पताका पर वे सर्वदा स्थित रहते हैं थे। पुराणों के विवरण से हनुमान के प्रतिष्ठित स्वरूप का ज्ञान होता है। दक्षिण तंजोर से चोल राज्यकालीन हनुमान की कांस्य मूर्ति मिली है। इसी प्रकार बेलूर से हनुमान की मूर्ति कोष्ठ में 12वीं सदी प्राप्त हुई है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भगवान राम के साथ हनुमान की मूर्ति का भी प्रतिष्ठापन किया जाता था। वहाँ के स्थापत्य में राम कथा के चित्र दर्शित होते हैं। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है।